ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਜਾਂ ਬਖੇੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी तरतीब अनुसार जदों आपां पढ़ने आ भगतां दे शलोक बाबा फरीद साहिब ते कबीर जी उन्हां तों बाद सवैये ते सवैयां तों बाद शलोक वारां ते वधीक ते सरलेख विच बाणी आउंदी ते जिहदा पहला शलोक है वह तंगी पाहोरी गैर गंभीरी ससड़ सुइया किव करी निवन न जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए धौल हरी शेफ ही देंदे डिठ मैं मुंद न गर्ब थनी। शलोक वारां ते वधीक दा कोई भाव है ध्यान रखना गुरु ग्रंथ साहिब विच बाई वारां ने वारां केवल पहला पौड़ियां सन बाई वारां विचों 21 वारां तां सतगुरु साहिबान जी ने उचारण कीतियां ने ते एक वार गुरु के रबाबी सिंघां ने उचारण कीती है जिन्हों आपां पढ़ने आ राम कली की वार राय बलवंड तथा सत्य डूम आखी ए वारां 22 वारां विचों एक वार रबाबी सिखां ने उचारण कीती 21 वारां सतगुरु ने उचारियां। मैं अर्ज कर रहा वारां दी बनतर केवल पौड़ियां भाई गुरदास दियां वारां पढ़ने आ किते भी शलोक नहीं आउंदा केवल पौड़ियां ही पौड़ियां आउणगियां एक वार दे अंदर किसे विच 30 पौड़ियां ने किसे विच 32 पौड़ियां ने किसे विच 40 पौड़ियां ने वार दी बनतर केवल पौड़ियां है। ते जदों धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना कीती ते इन्हां वारां दे विचों 20 वारां ऐसियां ने जिन्हां पौड़ियां दे नाल मेरे सतगुरु ने शलोक भी दर्ज कर दिते जिवें आपां आसा दी वार पढ़ने आ ओदी पहली पौड़ी है आपी मैं आप साजो आपी मैं रचियो नाउ ते एदे नाल पहला शलोक अंकित कीते ने बलिहारी गुर अपने द्योहारी सदवार मेरे कहण तो मुराद पहला वारा केवल पौड़ियां सन गुरु अर्जन साहिब जी ने इन्हां वारा दियां पौड़ियां नाल शलोक अंकित कीते ते दो वारा गुरु ग्रंथ साहिब विच अजे भी मौजूद ने जिहड़ियां केवल पौड़ियां ने उन्हां दे नाल एक भी शलोक ने जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हैं उन्होंने गुरसिखा पता है एक तो वार जी मैं अर्ज की सत्ते बलवंड वाली केवल 8 पौड़ियां ने शलोक कोई नहीं ते दूसरी वार है बसंत की वार महल 5वां हरका नाम त्याय का वो हरिया भाई कर्म लिखंते पाईया ए रुत सुहाई एदियां केवल 3 पौड़ियां ने एदे नाल भी कोई शलोक नहीं। खैर मैं जी अर्ज कर रहा बाणी आई अखीर ते शलोक वारां ते वधीक ते एदा अर्थ बनदा है गुरु पंचम पिता कह रहे ने कि गुरसिखो जेड़े शलोक तुसी हुण अगे पढ़ोगे ए शलोक वारां ते वधीक 12 दा अर्थ है 12 तों वधीक दा अर्थ है वधे होए जेड़े शलोक 12 तों वध गए ने ओह शलोक असी वखरे अंकित कर दिते ते उन्हां शलोकां दा सरलेख रख दिता शलोक 12 ते वधीक। खैर मैं अपने विषय वलाव शलोक 12 ते वधीक विच असीं पढ़ने आ अनेकां शलोक ऐसे ने जिन्हां नूं पढ़ के बड़ा आनंद आउंदा है। एक शलोक आउंदा है लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर ए शलोक उचारण कीता गुरु नानक साहिब ने ते इस दे नाल ही ए 6 शब्दां दे सुमेलन नाल बणिया है लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर एदे अगे आउंदा है महला 3 बाणी पढ़ने वाले नूं पता है उत्थे आउंदा है लाहौर शहर अमृतसर सिपती दा घर। जदों इन्हें शलोक पढ़ी देने ते इहदे अर्थ बड़े भाव पूरक ने सतगुरु गुरु नानक साहिब कह रहे ने लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर उस वक्त शब्द उचारिया शलोक उचारिया जदों गुरदेव लाहौर की धरती ते पहुंचे ने अमृत वेले परमेश्वर का नाम जपण का समा सी ते लोक जीवां का घात तय करदे ने पशुआं का चार चफेरे चीक चहाड़ा पिया जिन्हां नूं वढ़िया जा रहा है प्रोफेसर साहिब सिंह अर्थ करदे ने उत्थे हजूर ने कहा दुनिया के लोगो सवा तैर रात रहिंदिया तां प्यारे प्रीतम की याद भी जुड़न का समय जेड़ा समा तुसी जहर घोल के बर्बाद पै कर दे लाहौर शहर जहर कैर सवा पैर ते जदों गुरु अमरदास जी का समा आया गुरु रामदास जी का उत्थे प्रकाश हो चुका है चूना मंडी लाहौर ते कहिंदे ने उत्थे गुरु अमरदास जी ने देखिया गुरु नानक जी की कृपा नाल लाहौर विच जेड़ा अगे दुनी चंद केवल दुनिया दियां गल्लां करदा सी मेरे सतगुरु ने दीन दे नाल जोड़ दिता। ओ लाहौर की धरती जिथे मनसू केवल व्यापार दियां गल्लां करदा सी, मेरे सतगुरु ने नाम दा व्यापारी बना दिता। उस लाहौर शहर नू देख के गुरु अमरदास कहन लगे, महला तीजा लाहौर शहर ए जिथे जहर घुलदा सी। ते फिर कहन लगे, हुण की बन गया? अमृतसर सिवती दा घर, ए परमेश्वर दी सिवत सलाह करन दा एक सरोवर बन गया। हुण एहो जिहा घर धर्मशाला बनी जिथे परमेश्वर दी बंदगी कीती जांदी। कई वारी इसे नू जोड़ने आ, अमृतसर नाल कोई शक नहीं, ओ भी सिवती दा घर है, इहदे विच कोई दो रावां नहीं। पर एक गल चेते रखियो, उदो अमृतसर शहर दा नाम भी अमृतसर नहीं सी पिया। पहला नाम सी चक गुरु का, फिर गुरु का चक, फिर एदा नाम पै गया सुदासर, ते सुदासर तो बाद एदा नाम रामसर भी पिया, ते रामसर तो बाद फिर इस शहर नू श्री अमृतसर साहिब आपा जी कहिंदे। गुरु अमरदास जी दे वक्त ए केवल सी गुरु का चक जां चक गुरु का। खैर मैं अपने विषय वल अगे तुरिया, इसे वारा ते वधीक विच गुरु नानक साहब जी दा एक बचन है। साहब कहिंदे ने, जदों कोई अपने असले तो विछड़ जांदा है, प्यारो ओदे पल्ले केवल दुख पैंदा है, ओदे अंदर नू कदी टिकाओ नहीं। सतगुरु ने बाणी विच बचन कीता, कहन लगे, मैं तुरिया जा रहा एक सरोवर देखिया जिहदा पानी बिलकुल अत दा निर्मल है। सरोवर के पानी विच झाती मारीए ते अपना चेहरा नजर आउंदा साफ। उस सरोवर विच कमल के फुल खिड़े ने, पीले रंग के फुल। इस तरह प्रतीत हुंदा है कि जिवें मानो सरोवर के पानी की तह के उपर सोना तरदा होवे, जिवें सोने की चमक होवे। हजूर कहिंदे ने, कुछ समा मैं इस सरोवर के कोल रुकिया वा, इहदे ठंडे पानी का आनंद माणिया, अगे चले गए। परत के कुछ दिनों बाद आया ते देख के हैरान हो गया, ओही सरोवर है। ध्यान रखना, जिदा पानी अत्ता निर्मल सी, पानी दा रंग काला शाह हो चुका है, ओही सरोवर है जिदे विच कमल फुल तारियां लांदे सन, ओ फुल सड़ चुके ने, मुरझा चुके ने। ओही सरोवर है जिदे फुलां दी महक लैण लई भवरे आउंदे ने। ते हजूर कहिंदे ने, उत्थे हुण भवरियां दी थां ते केवल मलीन गंदे मक्खियां ते मच्छर बैठे ने। ते सतगुरु ने बाणी विच पुछ लिया, कहन लगे, ओ सरोवर कदी तेरा सुहपन बड़ा सी, तेरे कुल निर्मलताई सी, तेरे कुल फुलां दी महक सी, भवरे शहदाई सुगंधी दे तेरे कुल आउंदे सन, अज तेरा जुस्सा बिलकुल काला हो गया, महक दी थां बदबू आ गई, भवरे भी चले गए, एदा कारण की रोग तेनू लग गया? ते सतगुरु कहन लगे, उस सरोवर ने अगो उत्तर दिता, बाबा रोग ता की लगना सी, याद रख मेरे सतगुरु कदी निर्मलता ही सी, कदी महक सी, कदी भवरे आउंदे सन, ए उदो सन जदों सरोवर कहिंदा मेरा संबंध पानी दे चश्मे नाल जुड़िया सी, जिदन दा मैं अपने असले नालों टुट गया वा, बाबा उदन तो बाद मेरे पल्ले केवल दुख ही दुख पिया, क्योंकि अपने असले नालों टुट के कदी जीवन विच कोई सुखी नहीं हुंदा। मैं गल सिखी दी भी करनी चाहना, जे मना तू इस गुरु नानक दे दर तो टुट गया ना, मत समझी किते जीवन विच सुख, कालापन तां उदन ही पैदा हो जाणा है जिदन गुरु तो टुट के दूर चला गयो। ते जेड़े गए भी अखीर ते उन्हां दी बंद खलासी भी उदन होई जिदन अकाल तख्त ते झोके उन्हां नूं मन्ना पिया कि कसूर साडा सी गुरु दा नहीं, असी टुट के गए हां, क्योंकि टुटिया होया दे जीवन विच कदी महक आ ही नहीं सकदी। सतगुरु ने वचन कीता, कहन लगे, पब्बर तू हरियावला, पब्बर दा अर्थ है पानी दे सरोवर, कदी तेरे विच हरियावल सी, कवला कंचन वन, कवला दर ते कमल दे फुल, कंचन वन दर ते सोने वर्गे तेरे ते तारियां लांदे सन, पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन, कै दोखड़े सड़े ए। हजूर कहिंदे ने, की दुख पै गया तेनू ए सरोवर, काली होई है ब्योहरी, ए सरोवर तेरा रंग बिलकुल काला पै चुका है, नानक मैं तन भंग। ते अगो सरोवर ने जदों कहा ना, नानक मैं तन भंग, ते एदे अर्थ ने सरोवर कह रहा है, सतगुरु गुरु नानक साहब मैं तन भंग, भंग दा अर्थ है तोता, मेरे तन दे विच तोता पै चुका है,
जाना मेनू समझ पै गई जाना पानी ना लहा जै सेती मेरा संग हे सतगुरु जिस पानी ते चश्मे नाल मेरा संबंध सी जिदन दा ओदे तो टुट गया वा ओदन दा सुख नहीं हूं जाना पानी मैं लहा जै सेती मेरा संग जित दिठा तन पर बड़ा चढ़ा चवगण वन जिन्नू वेख के मेनू खेड़ा मिलदा सी जदो ओदे नाल भी मैं टुट गया हुण खेड़ा ना दी चीज कोई नहीं रह गई। सतगुरु कहन लगे आत्मा ता निर्मल भलिया देख उस परमेश्वर दी अंशी जिन्नी देर तक तू गुरु की बाणी में जुड़े भवरे भी तेरे नेड़े टेक के तेरी मैत दा आनंद मानणगे जितन इस गुरु ग्रंथ साहिब चश्मे नाल टुट गयो ते याद रखी सजना ओदन अंदर मलीन पई ओदन कोई भवरा तेरे नेड़े नहीं टुकना केवल ओ नेड़े आउणगे जिन्हां ने अपने जीवन पहला तबाह किते होए गंदगी नेड़े होर कोई नहीं। साध संगत मैं अर्ज कर रहा एक पानी का सरोवर अपने चश्मे तो अपने असले तो टुट जाए ध्यान रखना ओदे विच बदबू पैदा हुंदी है। दूसरी उदाहरण गुरुदेव ने बाणी विच दित्ती मैं सिर्फ अज अर्ज करनी चाहना असले नलो टुट के अपने मूल नलो विछड़ के सुख नहीं। वैसे हर चीज जेड़ी है ओ अपने मूल वल नू जांदी है। पिंडां विच बड़ियां सी उदाहरणां वेखदे सां हुण मोमबत्ती बालने ते मोमबत्ती दी लाइट उपर नू क्यों उठदी है जे आपां टेढ़ी भी मोमबत्ती करिए तां वी उपर नू जे नीवी करिए तां वी लाइट उपर नू उठदी है ते असल विच ओ मोमबत्ती दी रोशनी ओदी लाइट ओदी लो वी कह रही है कि जेड़े पासे मर्जी तू मैनू सद दे पर मैं उठना उपर नू वे क्योंकि मेरा जेड़ा असला मेरा असला उपर सूरज है मैं अपने असले वल नू उठांगी मैं अपने असले तो बिना किसी होर पासे जाना। एक दीवे दी लाइट भी उपर नू उठ रही है। असी पिंडां विच देखने हां कणक कढ़नी ते हां हुण तां आपां घर खाण वास्ते भी दाने रखने तां दवाइयां लाणियां कोई कीड़ा ना लग जाए ते पुराने बजुर्गां ने की करना जेड़ा बीज आपां अगली बियाई नू पाणा है कणक भी जेड़ा अगली वारी आपां कणक बीजनी है ओदियां बोरियां तूड़ी दे पुन्नू विच तूड़ी दे कुप्पां विच नप देणियां ते पुछना इहदा कारण की उन्हां कहना तूड़ी विच रखी हुई कणक नू कदी भी कीड़ा नहीं लगदा बीमारी नहीं लगदी ते हुण जदों सोचीदा ते मन कहिंदा असलियत इहदे विच भी रमदी कल्ली कणक नू रखे कीड़ा लग जाएगा खत्म होएगी पर जदों नू तूड़ी विच रखिया कीड़ा नहीं क्योंकि जिदे विचों निकल के आई ओहदे विच परत के मिली इस करके नू कदी रोग लग नहीं सकदा अपने असले नाल जुड़ी। तीसरी उदाहरण पिंडां विच असी वेखने आ गन्ने दा रस कढ़ना खीर लोक बनांदे सन गल्लां छोटियां छोटियां ने पर हैन कोई सिक्ख्या दायक करना कि जदों ड्रमी जां किते भांडा दोणा चाटी रस दी भरनी ना ते बजुर्गां ने कहना इहनू घर लिजाण तों पहलां दो चार पीस गन्ने दे कट के विच रोह दे पा देने सोचना भी हद होगी इह कोई शगन है ते स्याणियां बजुर्गां ने कहना इह चंगा हुंदा है असल विच कल्ली रोह नहीं लै के जाईदी विच गन्ने दे टुकड़े पा के जाने चंगे ने ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਰੋਹ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਅਸਲਾ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲਾ ਪਕੜੀ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੰਮ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁੜੇਗਾ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਵੇਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ जहां जहां तुम धर्म बिठारो दुष्ट दोखियन पकड़ पिछारो यही काज धरा हम जन्मंग समझ लो साधु साधु सब सब मनमंग धर्म चलावन संत उभारन दुष्ट सबन को मूल उभारन एक बंदगी भी जुड़े हुए ने ठल पाई असि कहे गुरु गोबिंद सिंह जी ते कृपान तू की तान ते कदी भाई गुरदास नु पढ़ो कह लगे बाबा जी मिले सुमेर पर्वत सिद्ध पुछदे ने बाबा जी थले की कुछ ते सतगुरु ने उथे भी गल की कहन लगे सिद्धो पुछो कुछ ना कल आई कुत्ते मुई खा दुआ मुरदार गुसाई राजे पाप कमाम दे उल्टी वार खेत को खाई सतगुरु जपदे नाम ने आधार मेरे गुरु नानक दा बंदगी है पर जदों जुल्म करदे नूं टकदा ते उदों भी मेरा बाबा कहिंदा पुछ कुछ ना बस वाड़ी खेत नूं खांदी पई है उन्हां कहा कोई राजा नहीं दुनिया विच रोकण वाला ते बाबे ने कहा थम्मे कोई ना साध बिन साध ना दिसै जग विच कोवा इहदा मतलब कोई कमाई वाला पुरश पैदा होवे ते इन्हां नूं थम्मेगा ते कमाई वाला बंदगी वाला एक भी पैदा हो जाए ते कौमां दे मूंह धो के रख दिंदा साध संगत मैं खैर अपने विषय ते आवां असले नाल जुड़िया भगत कबीर साहब कहिंदे ने जदों सूरज निकलदा उदों कन्नां विच इक आवाज पैंदी है ते मैं सोचना पता नहीं किन्ना कु कोई परेशान है किन्ना कु आनंदत है जदों सूरज निकलदा उदों भी खुशी नाल ए लोकां नूं अपनी खुशी जाहर करदा शाम नूं सूरज छिपदा उदों भी अपनी खुशी प्रगट करदा ते गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत जी कहिंदे ने मैं एक दिन चला गया उस आवाज नूं मुख रख के ते मैं हैरान होया ओ आवाज एक मंदिर विच आउंदी पई सी देव आलिया विच आउंदी पई है ते मैं सोचिया ए आवाज किहदी है ते पुजारी ने संख पकड़िया ते संख दे विच जदों फूक मारदा ते इक्को दम आवाज निकलदी है कहन लगे मैं पुछिया ए संख तू बड़ा खुश किस्मत है भगवान दियां मूर्तियां दे कोल पिया उन्हां दे मुताबक तैनू तां सोहणे कपड़िया विच लपेट के रखिया तेरे उत्ते तां मिठे प्रसाद चढ़ाए जांदे ने ते संख ने एक गल कही कहन लगा बाबा मेरा एक संदेश समुंदर तक दे दई देख समुंदर विच उठियां लहरां मेरा असला केवल समुंदर ही समुंदर विचों लहरां उठियां मैं मूर्ख ने लहर के दुख नूं ना सहारदिआं होइआं इक्को दम अपने आप नूं समुंदर तों वख कर लिया जितण दा समुंदर तों वख होइआ मैं खुश नहीं अपने असले नूं चेते करके सवेरे भी तहां मार के रोना ते शाम नूं भी विछोड़े दे दुख नूं रोना पिआं क्योंकि असले तों विछड़ के सुख नहीं कबीर साहिब ने वचन कीता कबीर राय नायर विछोड़िआ राय नायर दा अर्थ रतना दी खान विछोड़िआ दर ते विछड़े होए ए रतना दी खान तों विछड़े होए कबीर रह नायर विछोड़िआ रो रे संख मजूर ए दर ते ए संख रह भावें गुरु कोल लै के तैनू दुख मिले सुख मिले गुरु दी हर लहर तैनू आनंद देगी पर एदे नेड़े रह के मुसीबत पै गई छड के भजी ना क्योंकि ए लहर दे के फिर अपनी गोदी दे देंदा बाहर निकल गया ते ताहां तो बिना पल्ले कुछ भी नहीं पैना कबीर रह नायर भी छोड़िया रो रे संक मजूर देवल देवल ताहड़ी देवल दर के देव आले हर एक देव आले मंदिर दे अंदर ताड़ी दर ते ताहां मारनिया पैणगियां दिस है उगवत सूर जदो सूरज निकलेगा उदो भी रोएगा शब्दियां भी रोएगा असले नाल जुड़ के सोखे सतगुरु की बाणी विच तीसरा प्रमाण मैं अर्ज करा गुरु ग्रंथ साहिब विच इक श्लोक आउंदा है साडे टुकड़े क्यों ने असी वंडे क्यों वा हर बंदा जिहड़ा चेते रखे उहदी इक्को अंदर दी बिरती बन गई मैं ठीक हाँ बाकी सब दुनिया झूठी और किसे नूं पता ही नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब ने तां क्या कहन लगे सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आख है बाबा नानक जी ने कहा मैं जोगी नूं पुछना कहिंदा मैं चंगा ब्राह्मण नूं पुछना कहिंदा मैं चंगा काजी कहिंदा भी बस साडे तों बिना ते बाकी सब मुर्दे ने बाबा कहिंदा नहीं सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आख है पता ते उदन लगना पत परवाना पिछे पाईए तां नानक तोलिया जाप है सतगुरु ने बड़ी कमाल दी उदाहरण लई टुकड़े होण दा की कारण साहब कहन लगे अक्सर जदों आपां जेठ हाड़ दे महीने तपदे ने पंजाब दी धरती ते याद रखना अक्सर दरियावां दे कंढियां ते जां रेतली जमीन बरानी पैली दे विच सानू मिलणगे अक दे बूटे उन्हां अक दे बूटियां नूं छोटे छोटे फल लगे ने जिन्हां नूं अंबकड़ियां भी कहिंदे ने ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਦੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਲੂਹ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂੰ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਉਸੇ ਫਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੂੰਬੇ ਤੂੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਪੈ ਗਿਆ ਕਦੀ ਤੂੰ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੈ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੈ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂ ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਦਣ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਪਾਟ ਗਿਆ ਪਾਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂੰ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਸਾਡੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਕ ਦੇ ਫਲ ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ ਅੱਕ ਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਧਨੀ ਸਿਓ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਸਹਿਸਾ ਗੰਟ ਸਹਿਸ ਦਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੁਕੜੇ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਏ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਟਿਕਿਆ ਜੇ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ ਕਾਲਖ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਬੋਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਆ ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰੀਏ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਦਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਦਾਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪਾਟ ਗਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਬਦਾਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਮੈਂ ਐਸ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਚੌੜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤੀਆ ਚੌੜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿੱਛ ਨੱਚਦਾ। ਕੀਰਤੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁਸ਼ਾਕ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਰੁਸ਼ ਦੀ ਪਾਲੀ ਕਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨੱਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪੈਂਦਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸੈਂ जे तू मेरा हुण रो ना इस वक्त कलमा पढ़ मैं तेनू खुदा दे घर थां दवांगा। ते ओ हाथ जोड़ के कहिंदा बापू बिछड़ गया सां दुख पल्ले पै गया अज मिलिया कृपान दे नाल असल भी तेरी कृपान ही मेरा रब दा कलमा बन गई क्योंकि मिल के सुख मिलदा। भाई महा सिंह सतगुरु की गोद विच ने भाई साहब की जीवनी नूं देख के कई गल्लां मन विच आउंदियां। नसीब नहीं कि बापू कोल बैठ के उन्हां दे चेहरे नूं भी साफ करदा है। महा सिंह किन्निया भागां वाला सैं गुरु ने पुत्र छड़ के तेनू अपनी गोद विच लै के जान लगिया तेरे चेहरे नूं अपने रुमाल नाल पुंजिया। भागां वाला नहीं गुरु ने गोद विच रखिया। उत्थे एक बड़े कमाल की गल कही प्रोफेसर साहब ने कृपाल सिंह लिखते ने आखते ने सतगुरु ने कहा देखो महा सिंह अखा खुलिया। ते उत्थे महा सिंह ने अरदास की सी कहिंदा सी दाता एक पासे मौत है एक पासे गुरु है पता नहीं अज मौत जितती है कि गुरु जितदा है। मौत भी नेड़े आउंदी पई है जख्म इन्ने गहरे ने ते गुरु दे भी इंतजार करना पता नहीं अज मौत ने जितना है कि गुरु ने जितना है। पर हैरानगी की बात मौत हार गई जिन्नी देर तक गुरु नहीं आया उन्नी देर तक मेरे मौत भी नहीं टुकी। गुरु जितया मौत हारी। साहब कहन लगे महाशिया कर्म खंड तक पहुंच चुके हैं। बड़ी रमज भरी बात सी पंज खंड ने ना धर्म खंड ज्ञान खंड शर्म खंड ते चौथा खंड है कर्म खंड। कर्म खंड दर ते बख्शिश वाला खंड क्योंकि सच खंड तो पहला पड़ा जेड़ा सिख दे जीवन का कर्म खंड है। पहला धर्म खंड का मतलब है समझ पै गई मैं धरती ते धर्म कमाण आया। जदो धर्म कमाण लगा ज्ञान की समझ पै गई एक चंद्रमा एक सूरज नहीं मना ये रब ने बेअंत कुदरत रची है अंदरों होमे मरी। ते ज्ञान तो अगे गया मेहनत वाले खंड विच उत्थे सुरत मत मन बुद्ध सब कुछ घड़िया गया। जदो सुरत मत मन बुद्ध घड़ी गई फिर कर्म खंड विच पहुंचिया ते कर्म खंड विच केवल महा सिंह वर्गे सूरमे वसदे ने जिन्हू गई गुरु कहिंदा है। साहब कहिंदे ने कर्म खंड की बाणी जोर तिथा होर ना कोई होर तिथा जोद महाबलसूर। बहादुर सूरमे पहुंचदे ने जिन्हां ने अंदर भी मारिया ते बाहर नूं भी कुर्बान कीता है। साहब कहन लगे महा सिंह कर्म खंड विच पहुंच गए अंतला पड़ाई सच खंड क्यों नहीं कर्म खंड दे दरवाजे नूं लंघ के अगे सच खंड विच पहुंचदा। उन्हें एक गल कही कहन लगा दाता किवें पहुंचा। साहब ने कहा कि तेरे लिए सच खंड दे दरवाजे बंद ने। कहन लगा नहीं साइया दरवाजे तो मेरे लिए सच खंड दे भी खुले ने पर जदो लंघन लगना ते उत्ते एक फट्टी लगी है जिदे ते लिखिया गुरु गोबिंद सिंह तू मेरा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। सच खंड भी जान तो पहला दात्या उस फट्टी नू तोड़ के चूर चूर कर दे मैनू अपने नाल मिला लै। साध संगत बेदावा की पातिया भाई साहब जी सच खंड चले गए। एदा मतलब एडी वड्डी कुर्बानी करके भी सिख कहिंदा दाता मैनू अपने नाल मिला लै ता मेरे जीवन विच सुख है। मैं अर्ज कर रहा भाई वीर सिंह दी गल कह के समाप्ति करा। ओ कहन लगे मैं तके है भट्ठी विचों कोला डिगया है पहला लाल सी सुरख सी चमक सी जदो बार डिगा डिगदिया सार ओदे चेहरे ते काल खा गई इन्नी की कालों आई। चित कीता परत के फिर इनू सुरख करा ए लाल होवे। भाई साहब कहन लगे मैं लाली लियाउण लई साबण विच धो के भी कालक दूर करनी चाहिए पर साबण भी धो के देखिया फिर भी कालक। लोग ओदी कालक दूर करदे सन दही विच पाया लस्सी दुध विच पाया फिर धोता फिर काला। कहन लगे मैं सोचिया चलो लाल रंग ही कर दिया शायद लाल हो जाए। जदो रंग चाढ़न वास्ते इनू भट्ठी ते पाया ता भी काला ते अखीर ते कोले विचो आवाज आई बाबा जे मेरी लाली देखनी चाहना है साबण नू छड दुध दही विच पाना छड़ दे जे मेरा लाली ते रंग देखने ही परत के उस अग दे भांबड़ भी सड़ दे जिदे तो मैं बिछड़ के आया क्योंकि असले तो विछोड़ा जेड़ा ओही ता कालख है। हजूर दे प्यारे सिख भाई साहब लिखते ने साबण लाला धोता कोला दुध दही विच पाया खुंभ चार रंगन सी धरिया रंग ना उस बटाया बिछड़ के कालख सी आई बिन मिलिया नहीं लेंदी अंग अग दे ला के देखो चढ़दा रूप सवाया। साध संगत आओ अपना असला जे गुरु ग्रंथ साहब
मैं अर्ज वार वार कर रहा हूं कि गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ो। गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किते चारा नहीं जे। गुरमुख की संगत करो पर पदवी गुरु की केवल गुरु ग्रंथ साहब नूं है। धन गुरु ग्रंथ साहब कृपा करन, सानू भी सूझ बख्श देन, इनियां बेनतियां प्रवान करिया जे। वाहिगुरु जी का खालसा।